أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. پیارے دوستوں اور درشکوں، السلام علیکم۔ ایشور سے ہماری یہی آشا ہے کہ اس دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، وہ ہر پرکار سے سوستھ ہوں، ان کے جیون میں کوئی سنکٹ نہ آئے، اور وہ دشمن جو آج شیعہ اور مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، ایشور ان کو ان کی کرنی کا پھل دے۔ میرے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام سے اس بارے میں بات چیت آرمبھ کی تھی کہ جب ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے استھان کے بارے میں کیا احکام ہیں، وہ جگہ جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں نمازی کے استھان کی شرطوں کو آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ نمازی کے استھان کو مباح ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ہم نے وسترت روپ سے آپ کے سامنے مسائل کو بیان کیا، اور دوسری شرط جو یہ تھی وہ یہ تھی کہ نمازی کا استھان جہاں پر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہلتا ڈلتا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اسی کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ ہلتا ڈلتا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا مطلب ہے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بتایا، شرط دوسری یہ ہے کہ نمازی کا جو استھان ہے وہ رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، ہل ڈل نہ رہا ہو۔ اس کا ارتھ یہ ہوا کہ انسان ٹرین میں، بس میں، کشتی میں، ہوائی جہاز میں، اس پرکار کی جگہوں پر جب وہ چل رہی ہوں اور جن کے چلنے کے کارن انسان کا شریر ہلتا ڈلتا ہو، ان استھانوں پر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وش ہو جاتے ہیں کہ ایسے استھانوں پر نماز پڑھیں، یعنی اگر ایک مسلمان کسی ایروپلین پر سفر کر رہا ہے، کسی ٹرین میں یاترا کر رہا ہے، تو اگر وہ اس بات کا انتظار کرے کہ جب ٹرین رک جائے یا پلین لینڈ کر جائے اس کے بعد نماز پڑھیں، تو اس کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے یا قضا ہو جائے گی، سمے نکل جائے گا، تو ایسی اوستھا میں وہ وش ہے۔ اب کیا کرے، کیا وہ نماز کو قضا کر دے یا نماز کو ایسے ہی پڑھے؟ تو ہمارے فقہا یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر انسان وش ہے تو ایسی اوستھا میں وہ چلتی ہوئی ٹرینوں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر ہل ڈل رہا ہو وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو پریتن یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک سمبھو ہو اپنے شریر کو ہلنے ڈلنے سے روکے۔ تو جب ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں جب انسان ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر وہ ہل ڈل رہی ہیں، تو اس کو اس استھان کے اترکت باقی تمام چیزوں کے بارے میں دھیان رکھنا ہوگا اور ان کو پورا کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہوگا، اگر غسل کی آوشیکتا ہے تو غسل کرنا ہوگا، تیمم کرنا ہوگا، اگر تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ایسے ہی نماز پڑھنا ہوگا اور بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سمے انسان ایسی چیز کے اوپر یاترا کر رہا جو ہل ڈل رہی ہے، مثلا ٹرین کے اوپر یا پلین کے اوپر، اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اس بات کا پریتن کرنا چاہیے کہ جتنا ادھک سمبھو ہو سکے وہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف رکھے، اس کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی ٹرین، اس کی بس یا اس کا پلین قبلے کی طرف سے مڑ جاتا ہے، دوسری طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو پھر قبلے کی طرف موڑ لے۔ یعنی اگر ہمارا चेहरा हमारे, अगर हमारा कैमरा हमारा क़िबला हो, जैसे हम सामने देख रहे हैं, अगर इधर क़िबला हो, तो अगर प्लेन यूँ जा रहा है तो सीधा होकर खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है, अगर प्लेन इधर की तरफ मुड़ गया तो उसको चाहिए कि जिस समय प्लेन मुड़ा है उस, चूँकि उसका चेहरा इधर की तरफ हो गया है, तो वो अपने चेहरे को दोबारा क़िबले की तरफ मोड़ ले। और इसमें एक बात जो सभी जानते हैं लेकिन यहाँ पर बता देना आवश्यक है, वो ये है कि जिस समय इंसान ऐसी जगहों पर नमाज़ पढ़ रहा है तो सजदे के लिए क्या करे, किस चीज़ पे सजदा करे। तो अगर किसी इंसान के पास सजदेगाह नहीं है, लकड़ी नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, तो उसको चाहिए कि वो कागज़ के ऊपर सजदा कर ले, और कागज़ के ऊपर सजदा उसका सही होगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें फुकहा जो हमारे महान और सम्मानीय फुकहा, उन बाज़ फुकहा ये कहते हैं कि सिर्फ के उसी कागज़ के ऊपर सजदा सही है जो उन चीज़ों से बनाया गया हो जिनके ऊपर सजदा करना सही था। इसलिए इस मसले में हमको अपने उस फकीह के बारे मसले को देखना होगा जिसकी हम तकलीद कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान विवश होता है, मजबूर होता है, जैसे कि हमने उसमें शर्तों में बयान किया था कि नमाजी का एक स्थान की शर्त यह है कि नमाजी का स्थान मुबाह हो। लेकिन कभी कभी इंसान विवश हो जाता है कि किसी ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़े जो गस्बी हो, जैसे किसी ने उसको पकड़ के ऐसे स्थान पर बंद कर दिया है जो गस्बी थी, या ऐसे स्थान पर उसको नमाज़ पढ़ना मजबूरी हो जाती है, जैसे कि हमने बताया था कि नमाजी का स्थान ऐसा हो जो खुला हुआ हो, जहाँ पर रुको और सजदा आराम से कर सकता हो, बहुत तंग ना हो। अगर इंसान विवश हो जाए कि गस्बी स्थान पर नमाज़ पढ़े या ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़े जो तंग हो, तो उसके लिए वो है कि वो नमाज़ ऐसे स्थानों पर पढ़ सकता है और उसकी नमाज़ सही होगी, नमाज़ के बारे में उसका कोई इश्काल वारिद नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और बात जो नमाज़ के सिलसिले में इसको अदब की बात कह सकते हैं, मसला काफ़ी हद तक नहीं हो सकता, ये है कि जिस समय इंसान नमाज़ पढ़ रहा है उसको चाहिए कि अदब की रियायत करे। यानी क्या मतलब, यानी अगर किसी ऐसे स्थान पर पढ़ रहा है जहाँ पर किसी नबी किसी मासूम की कब्र है, तो उसको चाहिए कि उनकी कब्रों के पीछे नमाज़ पढ़े, उनके आगे ना जाए। जैसे अगर किसी को तौफीक होती है, सबको खुदा ज़ायद की तौफीक नसीब करे कि अगर वो मदीने मुनव्वरा चला जाता है या करबला पहुंचता है या अतबादे आलियात में जाता है, वहाँ ज़्यारत के ऊपर ज़्यारत कर रहा होता है, अगर वहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक यह है कि जिस समय नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो तो वो नबी और मासूम की कब्र से पीछे खड़ा हो, उनके आगे या उनके बराबर खड़ा ना हो। लेकिन यहाँ पर फुकहा ये कहते हैं अगर खड़ा हो जाता है तो उसकी नमाज़ बहरहाल बातिल नहीं, लेकिन ये अदब नहीं है कि इंसान नबी या मासूम से आगे खड़े होकर नमाज़ पढ़े। और इसमें एक बात जो ध्यान रखने वाली है नमाज़ पढ़ते समय, उस वो ये है कि जिस समय नमाज़ पढ़ी जा रही है उस समय अगर मर्द और औरत एक साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आवश्यक ये है कि औरत जो है या महिला जो है वो पुरुष से पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़े, वो उसके बराबर या उसके आगे खड़े होकर नमाज़ ना पढ़े। यानी क्या, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष की नमाज़ के बारे में हमने बताया है, वहाँ पर स्त्री का महरम या नामहरम होना शर्त नहीं है। यानी हम ये कहें अगर नामहरम स्त्री है तो वो पीछे खड़ी हो, अगर महरम है तो बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकती, ना, यहाँ पर कुल्लन एक स्त्री के बारे में बात की जा रही है। जैसे अगर दो मियाँ बीवी हैं वो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आवश्यक यह है बीवी मियाँ से पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़े, पत्नी पति से पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़े, उसके बराबर खड़े होकर नमाज़ न पढ़े। यहाँ पर इसके बाद जो बात निकलती है वो ये हो सकती है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई स्त्री किसी पुरुष के बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे, मसलन मान लीजिए पति पत्नी या जमात में नमाज़ हो रही है, एक तरफ महिला खड़ी दूसरी तरफ पुरुष खड़ा हुआ है, दोनों बराबर हैं, या महिला पुरुष से आगे खड़ी हुई है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या नमाज़ सही है या नमाज़ सही नहीं है, क्या कहते हैं हमारे फुकहा। तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर महिला और पुरुष दोनों बराबर खड़े होते हैं या महिला पुरुष के आगे है और उन दोनों के बीच में कोई चीज़ फासला नहीं है, यानी जैसे कोई पर्दा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है, अगर ऐसा होता है तो अगर दोनों ने एक साथ नमाज की नियत की हो, यानी एक तरफ महिला खड़ी एक तरफ पुरुष खड़ी, दो पुरुष खड़ा हुआ है, दोनों ऐसे बराबर खड़े हुए हैं, या महिला आगे है और पुरुष थोड़ा सा पीछे, दोनों ने एक साथ नियत की, तो ऐसी सूरत में हमारे फुकहा ये कहते हैं कि दोनों की नमाज़ बातिल है, दोनों की नमाज़ सही नहीं है, दोनों को चाहिए अपनी नमाज़ को दोबारा पढ़ें। यहाँ पर हम आयतुल्ला खामनई ये कहते हैं कि जो फासला है महिला और पुरुष के आगे और पीछे होने में, महिला के खड़े होने का स्थान या सजदे का स्थान पुरुष के खड़े होने के स्थान से कम एक बालिश, तो यानी ठीक पीछे खड़े हो, उसके आगे या उसके बराबर न खड़े खड़ी हो। लेकिन आयतुल्ला सिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि वो महिला के सजदे का स्थान पुरुष के घुटने के स्थान से आगे ना हो। अगर पुरुष के घुटने के स्थान से आगे है तो वहाँ पर उसकी नमाज में इश्काल हो सकता है। इसमें एक बात और जो कहा जा सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ रहा होता है जहाँ से लोग गुज़र रहे हैं, मसलन मान लीजिए किसी रोड पे, किसी पार्क में, ऐसी जगहों पर अगर इंसान नमाज़ पढ़ रहा है तो क्या करे। तो कहा यह जाता है, फकहा ये कहते हैं कि अगर इंसान किसी ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ रहा है जहाँ से लोग गुज़रते हैं, लोग का आना जाना लगा हुआ है, या ऐसे स्थान पर नमाज़ पढ़ रहा है जहाँ पर कोई सामने बैठा हुआ है, मान लीजिए हम अपने कमरे में नमाज़ पढ़ रहे हैं, सामने कोई बैठा हुआ है, तो उसको चाहिए कि वो अपने सामने यानी अपनी जानमाज़ के सामने या जिस चीज़ पर नमाज़ पढ़ रहा है उसके सामने कोई चीज़ रख दे, मसलन रस्सी रख दे, डंडा रख दे, या कम से कम तस्बीह रख दे। तो उसको ये चाहिए कि ये चीज़ रख देना चाहिए, उसके बाद वो नमाज़ को शुरू करे और नमाज़ पढ़े। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और इस्लाम ने इसके ऊपर बहुत महत्व दिया है और बहुत उसके ऊपर ताकीद की गई है कि एक मुसलमान को चाहिए कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़े। जैसे कि बास हदीसों में भी आया है कि एक अगर कोई इंसान मस्जिद के पड़ोस में रहता है तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है कि वो मस्जिद में नमाज़ ना पढ़े, तो बेहतर यह है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़े। और वो मस्जिदें अगर हम सवाब के आधार पर मस्जिदों को बांटे कि किस मस्जिद में कितना सवाब है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे अधिक जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब है वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा के निकट आदमी नमाज़ पढ़े तो सबसे अधिक इसमें सवाब है, और जिसको ये तौफीक हासिल हो वो उसको वहाँ पर ज़रूर जाकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो मस्जिद आती है सवाब के आधार पर दूसरे नंबर पर, वो है मस्जिदुन नबी, ये जो मदीने मुनव्वरा में है। उसके बाद आती है मस्जिद कूफा, फिर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, फिर हर शहर की जो जामा मस्जिद होती है, जिस शहर में इंसान रह रहा है वो उस शहर की जो जामा मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ना बेहतर है बजाय इसके कि किसी दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़े। उसके बाद जो सवाब के आधार पर जिसका नंबर आता है वो है महल्ले की मस्जिद, यानी जिस महल्ले में, जिस शहर में, जिस गांव में हम रह रहे हैं, जहां हमारे पास के स्थान पर जो मस्जिद है वो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना बेहतर है, और वहाँ का सवाब घर के सवाब से बेहतर है, ज़्यादा है, अधिक है। उसके बाद अंतिम स्थान पर जिस मस्जिद का नंबर आता है वो बाज़ार की मस्जिद है, यानी अगर किसी बाज़ार में कोई मस्जिद है तो वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ना इससे बेहतर है कि इंसान अपने घर में नमाज़ पढ़े। और यहीं पर एक मसला जो हमारे कुछ भाइयों ने पूछा भी है हमसे और पूछते रहते हैं लोग, इस प्रकार का सवाल होता है कि महिला क्या करें। जैसा कि हमने बताया कि आपने बता दिया कि मस्जिद कूफा में नमाज़ पढ़े या मस्जिद सहला में नमाज़ पढ़े या मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़े, तो महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या महिला भी जाएं वहाँ नमाज़ पढ़ने। तो कहते ये हैं फुकहा का हमारा नज़र हमारे फुकहा का नज़रिया ये है कि वो कहते हैं कि महिला के लिए बेहतर ये है कि वो अपने घर में नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर महिला अपने आप को नामहरमों की दृष्टि से, उनकी निगाह से पूर्ण रूप से छुपा सकती हो तो उसके लिए भी ये बेहतर है कि वो महिला भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़े। यानी इसमें शर्त ये है कि नामहरमों की निगाह उसके ऊपर न पड़ती हो, वरना अगर अन्यथा ऐसा होता है तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपने घर में ही नमाज़ पढ़े। इसके बाद चूंकि मस्जिद की बात आई है लिहाजा हम आपके सामने कुछ मस्जिद के अहकाम, क्या मस्जिद में हराम है, क्या वाजिब है, क्या मुस्तहब है, क्या मकरूह, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके सामने एक दो नंबर के साथ आपके सामने बयान कर देंगे। जो मस्जिद में जो चीज़ हराम है, जो चीज़ें नहीं करना चाहिए यानी अगर किया तो उसके ऊपर इंसान को पाप लगेगा, वो ये है कि मस्जिद को सोने से सजाना। यहाँ पर कहा जाता है एहतियात वाजिब यह है कि इंसान को मस्जिद को सोने से नहीं सजाना चाहिए, और यह कार्य अगर किया जाता है तो ये हराम है, नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मस्जिद को बेचना या किसी ऐसे स्थान को बेचना जहाँ पर पहले मस्जिद थी, यानी मस्जिद थी, मस्जिद गिर गई, ख़राब हो गई, टूट गई, या कोई अत्याचारी हुकूमत थी उसने गिरा दी, जैसे कि आज हमारे बहरीन में आले खलीफा सरकार ये कर रही है, हज़ारों मस्जिदों को वहाँ गिरा दिया गया, तो वो जो मस्जिद का स्थान है उसको भी बेचना हराम है। तीसरी चीज़, जो चीज़ हराम है वो मस्जिद को अपवित्र करना, नजिस करना हराम है। और अगर किसी कारणवश मस्जिद नजिस हो जाती है तो इंसान के लिए आवश्यक ये है कि तुरंत फौरन पहली सूरत में ही उसको पवित्र करे, और उसके बाद मस्जिद से रेत और मिट्टी वगैरह को निकालना भी हराम है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो रेत और वो मिट्टी जो मस्जिद के लिए आवश्यक है, कभी कभी ऐसा होता है धूल और मिट्टी हमारे यहाँ मस्जिदों में आ जाती है उड़ के, तो इसको ना निकालने का अर्थ ये नहीं कि जो रेत और मिट्टी उड़ के आ गई है जो कूड़े की सूरत में है उसको भी ना निकाला जाए, ना, बल्कि उसको निकाल देना चाहिए। और अंतिम चीज़ जिसको बारे में कहा जा सकता है जो हराम है, वो है जैसे वो कुरान, वो सजदेगाहें, वो दुआओं की किताबें या इस प्रकार की चीज़ें जैसे जा नमाज, इस प्रकार की चीज़ों को जिनको मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया गया है उनको भी मस्जिद से निकालना हराम है और इंसान नहीं निकाल सकता है। तो हमने आपके सामने आज के प्रोग्राम में उन मसलों को बारे में बयान किया जो मसले संबंधित थे उस स्थान के बारे में जो हिल डुल रहा हो कि कैसे आदमी वहाँ पर नमाज़ पढ़ेगा। उसके बाद हमने आपके सामने मस्जिद में जो कार्य हराम है वो बताए। हम अपने अगले प्रोग्राम में कोशिश ये करेंगे कि मस्जिद में जो चीज़ मुस्तहब है और जो चीज़ें मकरूह हैं उनको आपके सामने पेश करें। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।